अब सभी को कहा था कि मैं आज तीसरा भाग सुनाऊंगी। मैंने इस क्लास के बीच में पहले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, यज्ञ कैसे रचा गया वो हिस्ट्री सुनाई थी, फिर कल सुनाई। तो कल मैंने कराची में हम लोग कैसे रहे और बाबा ने हमारी पालना कैसे की और हम लोगों की दिनचर्या कैसे रहती थी। आज मैं तीसरा भाग सुनाती हूँ, फिर मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप लोग ऐसी ऐसी बातें सुनने चाहते हो, क्योंकि हम तो हमारे सामने तो एक नेचुरल रूप है। कहानी तो आज करके मैं सुनाऊंगी, लेकिन हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो उसमें बाबा की कैसे हम बच्चों को मदद मिली है। न सिर्फ हमने बाबा से शिक्षा ली है, परंतु शिक्षा के साथ साथ बाबा हमारा कदम कदम पर रक्षक बन करके हमारी रक्षा भी करता आया है। कोई भी समय ऐसी कोई बात हमारे सामने आई है तो एक बाबा के सहारे पर, बाबा के मदद पर हम लोग चलते रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि 14 साल तो हम जैसे भट्ठी में थे, दुनिया के निगाहों से दूर थे, आवाजों से दूर थे, दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। हम अपने ही बाबा के छत्र छाया के नीचे अपनी दिनचर्या में मस्त थे, जिसमें योग भी था, ज्ञान से पालना भी होती रहती थी और मनोरंजन भी था। ऐसे नहीं कि बाबा ने हमको सूखा सन्यासी करके बिठाया, हम बच्चियां कैसे सूखे सन्यासी होके रहेंगे। रमणीकता से हंसाते, बहलाते, खेल कूद कराते, रास कराते, हर तरह से बाबा ने ऐसे हमारी दिनचर्या रखी जो हमको मालूम नहीं पड़ा कि हमारे 14 साल कैसे बीते। खैर, फिर हम यहाँ माउंट आबू में आए, तो माउंट आबू में आने के बाद हम लोगों को एक दो साल के बाद हमारे जो लौकिक पेरेंट्स थे उन सब के तरफ से पत्र व्यवहार शुरू हुआ कि भाई हमने सुना है कि आप सब बच्चियां सेफ्टी से कराची से माउंट आबू में पहुंच गए हो, तो हमारा दिल होता है कि आप हमारे पास आओ और हमें भी कुछ ज्ञान धन दान करो, हमको भी पता लगे कि आपने अपनी कैसी जीवन बनाई है, तो अपने जीवन से हमको भी कुछ लाभ दो। ऐसा मतलब उन्होंने का पत्र व्यवहार चलता रहा, परंतु हम ऐसे कैसे उन्हों के पास जाएं, क्योंकि अभी तक हमने उन्हों के पास भोजन नहीं पान किया था। भोजन भी हम अपने हाथ से खाएं, बर्तन भी स्वच्छ चाहिए, हमको बिस्तरा भी स्वच्छ चाहिए, सब कुछ हमको अलग किस्म का, उन्हों के बीच में हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोगों ने उन्होंने लिखा परी की कि यदि आप हमारे लिए अलग एक कमरे का प्रबंध करेंगे और बर्तन आदि का अलग प्रबंध करेंगे तो हम अपने हाथ से पकाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और हम भी खाएंगे और आप सबको भी खिलाएंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रबंध आप आसपास भी कर सको तो हम आपके पास आ सकते हैं। फिर उन्होंने वो भी प्रबंध किया, उस अनुसार हम गए। अब समझो हमने न ट्रेन देखी हुई थी, सिक्के बदली हुए, राज बदली हुआ हमने वो भी नहीं देखा, पैसा हाथ में नहीं उठाते थे, हमको कुछ भी दुनिया का ज्ञान नहीं है। अब हम जा रहे दिल्ली में, दिल्ली के ठग मशहूर हैं, हमको पता है दिल्ली में जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन मिलेगा, क्या क्या करेगा, और हम तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। पर हम लोगों से कैसे, हमारे से बाबा ने हमको तैयार किया। हर रोज क्लास में हम बाबा के सामने ऐसे बैठे रहते थे, तो बाबा हम लोगों को देख करके, मेरा नाम था हरि, हरि मीन्स दुख हरण करने वाले, और गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, दोनों का इकट्ठा नाम भी होता है। हरिद्वार में जाएंगे ना, शहर है हरिद्वार, हरि के द्वार पर गंगा बहती है। तो बाबा हम दोनों का नाम लेके, हर गंगे तुम पतत पावनी गंगे हो, तुम बच्चों को अंदर में रहम आना चाहिए, अंदर में ख्याल आना चाहिए। क्या है उमा बहन है क्या लंदन की, न्यूयॉर्क की उमा बहन, या मणि बहन लंदन की, ये बैठी है ना मणि बहन, हाँ वो जा रही है, उसको बुला रही है कोई। तो बाबा रोज प्रेरणा देता था हमारे नाम पर। आखिर जैसे ना चिड़िया अपने बच्चे को ठूंगा लगाते 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 खड़ा कर देती है, तो हम लोगों को अंदर से आवाज आया कि आज बाबा ने ये जो कहा है, हमको इशारा दिया है, अब हमको कैसे भी करके प्रैक्टिकल में ये काम करना है, जाना है। बस बाबा से हमको छुट्टी लेनी है, हमको जहां आएगा जैसे आएगा वैसे हम अपने ही ज्ञान योग बल से अपना सब बातें ठीक करेंगे, सेवा करेंगे। तो हमने क्या किया, एक पत्र अपने लौकिक संबंधी को लिखा कि हम दो बहने हैं, आप लोगों ने कई बार निमंत्रण दिया, इस मौके पर हम निकल सकते हैं, आपकी जो आशा है कि हमारे पास आओ, तो हम आपकी आशा को पूर्ण करने के लिए कुछ दिनों के लिए हम आपके पास आ सकते हैं। ऐसे करके हम उनके पास चले गए, चले गए। परंतु हमने कहा हम लौकिक संबंधियों में क्यों इतना समय रहे, हमको कोई निमंत्रण मिलना चाहिए, कोई दूसरी आत्मा हमको निमंत्रण दे। तो हमने क्या किया, ट्रेन में ही माताओं की सेवा शुरू कर दी। तो जैसे जैसे माताओं की सेवा शुरू की, तो माताएं तो जैसे कुर्बान जा रही थी, कहती है बहन जी हम जोधपुर में रहते हैं, क्या आप जोधपुर में नहीं आ सकते हो, आपको एक मास का मैं निमंत्रण देती हूँ, आप जोधपुर में आओ। कोई कहती है बहन जी जयपुर नजदीक है, हम जयपुर में रहते हैं, आप जयपुर में आओ। कोई ने दिल्ली का निमंत्रण दिया, हमने क्या क्या सबकी एड्रेसेस नोट कर दी, भाई ये तीन निमंत्रण तो हमारे सामने आ गए हैं, तो तीनों एड्रेसेस नोट की, उनको अच्छी तरह से ट्रेन में ही ज्ञान भी सुनाया, योग भी कराया, धारणाएं भी बताई, सब कुछ बता के हम दिल्ली में गए अपने लौकिक संबंधियों के निमंत्रण पर। तो उनके पास रही तो वो वंडर खाने लगी कि हमारी बहने खाती नहीं पीती नहीं, तो कैसे काम चलेगा, हम कैसे खाएंगे, आप खाओ हम आपको सब प्रबंध देते हैं, आप अलग ही पकाओ खाओ, बल्कि आप हमको भी खिलाओ। तो हमने कहा इनको भी खुश करना अच्छा है, तो हम खाना पीना पका के उनको भी खिलाते थे प्रसाद मात्र, और हम दो बहने भी अपने लिए पका के खा लेते थे। फिर सुबह को निकलते थे और रात्रि को देर से आते थे, एक ही धक से निकले, बिगड़ी लाइफ थी, पैसे भी इतने नहीं कि बार बार आए फिर पकाएं खाएं और फिर जाएं, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए। तो हम एक ही बार नाश्ता खा करके और फिर हम चले जाते थे। फिर कहां जाते थे, बुद्धि में आता था राजेंद्र बाबू के पास जाओ, प्राइम मिनिस्टर जो वो उस समय कौन था, नेहरू था शायद, उसके पास जाओ, इंदिरा गांधी थी मुख्य लीडर थी, उनके पास जाओ, तो उनके पास हम मातेश्वरी की आवाज के रिकॉर्ड लेके गए थे। मातेश्वरी ने वो रिकॉर्ड भरा था अपने पास, उसमें समय की सूचना थी, यज्ञ की पहचान थी कि परमात्मा शिव ने कैसे यज्ञ रचा है और ये समय कैसा जा रहा है, कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, आपको हम बधाइयां देते हैं, आपको हम निमंत्रण देते हैं, ऐसे से करके उनको इन सबको लिटरेचर भी दिया और जो रिकॉर्ड हम लेके गए थे वो भी उनको प्रेजेंट दिया। तो इंदिरा गांधी को पता लगा तो उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे कि आपकी संस्था का एम क्या है, आप देश की क्या सेवा करते हो, 14 साल आपने बैठ करके खाया पिया, क्या देश की सेवा की, आप वो हमको बताओ, देश की क्या सेवा करते हो। तो हमने बताया अभी हम देश की सेवा के लिए निकले हैं। जो ऐसी आत्माएं हैं जिनको परमात्मा का परिचय नहीं, विकारी संस्कार है, जिनमें दुर्गुण है, उनको हम योग के आधार से उनको दुर्गुणों से मुक्त करते हैं, दुखों से मुक्त करते हैं। तो आज हमारे देश में इन चीजों की जरूरत है। तो उनको अच्छा लगा, बोला ठीक है, कहां ठहरे हो वो बताया। तो ऐसे करते करते हम हर रोज हफ्ते हफ्ते एक एक माता के घर में सत्संग करते थे, एक एक एरिया में एक एक माता के घर में सत्संग करके मानो 50, 60, 70 माताएं हर रोज हमको मिल जाती थी। अब जिन जिन को हम बाबा का परिचय देते थे ना, वो दोबारा भी सुनने चाहती हैं, परंतु स्थान नहीं है उनके पास, फिलहाल तो पहले दिन थोड़ी कोई स्थान देगा। तो ऐसे करते करते दिल्ली के काफी स्थानों पर हमने बाबा का संदेश दिया। फिर हम लोग के संबंधियों के पास आ जाते थे, रात्रि को खाना पीना नहीं खाते थे, बहाना करते थे कि हम फल फ्रूट बहुत खा के आए हैं, हमको भूख नहीं है, क्योंकि हम कहते वो सगे वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि सारा दिन घूम घाम करके अभी आके स्पेशल खाना पकाते हो, तो हमको संकोच होता था, हम किसी को दुख क्यों दे। तो हम क्या करते थे, थोड़ा फल फ्रूट खाके गुजार करते थे, सो जाते थे रात्रि को, फिर सुबह हुआ फिर सेवा में चले गए। तो ऐसे करते करते एक मंदिर था, उससे जाकर के हमने बात की, तो बात की तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोला बहन जी नीचे एक कमरा खाली है, आप चलो हम आपको नीचे स्थान देंगे रहने का, और एक ही कमरे के अंदर सत्संग भी करो, भोजन भी कोने में पकाओ और खाओ, और जो लोग आवे उनकी सेवा करो। तो हम वहां रहे, एक मास के अंदर इतनी आत्माएं ध्यान में चली जाती थी, रोज हम योग में बिठाते थे, बिल्कुल जैसे हम योग रोज नहीं करते यहाँ, वैसे वहां योग करते थे। इतनी आलमैटी बाबा की मदद मिलती थी, कई बहनें कई माताएं ध्यान में चली जाती थी और उनको सब प्रकार के साक्षात्कार होते थे। माउंट आबू का साक्षात्कार, भरतपुर राजा की कोठी में बाबा कहाँ ठहरता है, मम्मा कहाँ है, सब सब उनको साक्षात्कार भी होता था और वो बैठ के हमको सुनाती थी। तो हमको वंडर लगता है कि हमने तो उनको कुछ सुनाया नहीं है और ये भरतपुर राजा की कोठी में कैसे मातेश्वरी रहती है, उनका कहाँ कमरा, बाबा कहाँ है, और कौन सी दादियां भोली दादी का नाम लोगे। मैं कहा ये तो वंडर है। तो ऐसे हमारा भी अपने कर्तव्य में विश्वास हुआ, हिम्मत का एक कदम हमने रखा है, मदद बाबा 100 गुनी दे रहा है। हमने सिर्फ बाबा को जी हाँ की कि बाबा हम सेवा पर जाएंगे, पर ऑलमाइटी बाबा कैसे हमको मदद कर रहा है, कैसे घर बैठे भिन्न भिन्न प्रकार के उनको साक्षात्कार करा रहा है। तो एक माता ने पूरा पहले मंदिर में थे तो 1-2 मास मंदिर में रही, मंदिर के पुजारी वो खाना पकाते देवताओं का, लेकिन हम वो खाना नहीं खा सकते। तो वो ट्रस्टी कहने लगे कि देखो देवताओं को जो भोजन लगता है वो आपको मिलता है, वो नहीं खाएंगे तो और कौन सा खाएंगे। तो हम कहते हैं ये तो नाराज हो जाएगा, भाई जो देवताओं को भोग लगता है वो भी तुम लोग नहीं खाते हो, अब क्या किया जाए। तो हम ऐसे चक्कर लगा रहे थे, एक बार देखा कि जो पुजारी है ना वो सिगरेट पी रहा है। तो जब देखा सिगरेट तो हमको बहाना मिल गया। फिर हमने उसको बोला
कि देखो हम वैसे तो खाते, परंतु आपकी जो पुजारी है ना, आप उसको डांटना नहीं, उसको तकलीफ है कुछ शायद पेट बेट की, इसलिए वो सिगरेट पी रहा था सुबह को। तो हम कोई भी ऐसा किसी के अंदर होता है ना, तो हम नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, हम फल खाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो ऐसे कैसे, फिर जाकर के उनसे पूछा, उसने माफी भी मांगी और माना भी कि हाँ मैंने पी है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम आपको सेलिब्रेशन देते हैं। फिर कच्चा अनाज देते थे, वो हम पका करके खा लेते थे, एक वक्त भोजन पकाते थे, सारा दिन आना जाना उसी हाल के अंदर कैसे खाना पकाए। सुबह को पका के रख लेते थे एक डब्बी में, और रात्रि को सब चले जाते थे तो गर्म करके और खा लेते थे बस। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या चलती रही। तो मंदिर जो था ऊपर में, वो था राम जी का मंदिर, राम लक्ष्मण का मंदिर, तो उसमें हमने एक कल्प वृक्ष का चित्र लगाया था, झारा का चित्र है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा। तो झारा का चित्र लगाया था, उस चित्र के अंदर एक चिटकी लगी हुई थी, खास बाबा ने लगवाई थी, तो रामायण इज नॉवेल। तो वो वहां का जो एक ट्रस्टी था, उसने ये पढ़ा कि रामायण इज नॉवेल, राम के मंदिर में इन्होंने झाड़ लगाए हैं, राम के मंदिर में इनको स्थान मिला हुआ है, और फिर कहते रामायण इज नॉवेल, बुलाओ इन लड़कियों को। तो ट्रस्टी बहुत गर्म हो गया, बैरिस्टर था, अच्छा तो कहा बुलाओ लड़कियों को। उसने हमको बुलाया, पूछा कहा ये क्या लिखा है। हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि सचमुच रामायण क्या है, राम की सीता, भगवती सीता, वो कैसे चुराई जाएंगी, क्या आप ऐसे मानते हो क्या, वो तो एक कहानी बनाई हुई है ना, पर सचमुच राम की सीता वो तो चुराई नहीं गई, भगवती सीता को कौन चुरा सकता है। लेकिन फिर भी वो मानते नहीं थे, कहते नहीं ये रॉन्ग लिखा है आप लोगों ने, चिटकी काटो या तो मंदिर खाली करो, अगर मंदिर खाली करते तो कहां जाए, दो छोटी छोटी लड़कियां, दिल्ली देखी नहीं, दिल्ली में ठग बहुत, अब हम कहां जाए। तो उस समय क्विक निर्णय करना है, तो आखिर हमने सोचा चलो आज चिटकी काट लेते हैं, झाड़ तो लगा रहेगा, बाकी चिटकी काट लेते हैं तो गुस्सा इसका ठंडा हो जाए। पीछे हमने चिटकी काट ली, चिटकी काट करके हमने बाबा को समाचार दे दिया कि बाबा आज वो बहुत गर्म हुआ, फिर हमको आकर चिटकी काटनी पड़ी, फिर नहीं तो हम कहां जाते। तो बाबा ने कहा कि अरे तुम तो रिढ़ बकरिया हो, तुम कमजोर हो, तुम शेरनी शक्तियां नहीं हो, तुम उनके कहे पर तुमने चिटकी काट दी। भगवान वाच्य शे बाबा के वचन वो तुमने काट लिए। तो बाबा के तरफ से टाइटल मिलने लगे मीठे मीठे, अरे ये तुम्हारी कमजोरियां हैं और तुमको स्वार्थ रहा कि हमारा मकान छीन जाए नीचे वाला हाल। हमने कहा ये तो बरोबर है। खैर फिर धीरे धीरे उस बैरिस्टर को धीरे धीरे रोज रोज जाके थोड़ी 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 बातें सुनाते, उनको थोड़ा अपने प्रभाव मिलाया। फिर भी उसने कहा ठीक है आप रहे परे हो, सेवा करो, पर खंडन मंडन नहीं करो, कोई भी चीज का खंडन नहीं करो, बाकी सेवा करते हो, भगवान का संदेश सुनाते हो, भले सुना। तो एक मास पूरा हुआ, इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा आप यहां क्यों ठहरते हो, आप चलो हम आपको जमुना के घाट पर ले चलते हैं, वहां बड़े बड़े लोग महात्मा लोग आके रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना दिए हैं, तो तुम तो पवित्र देवियां हो, तुम अगर जमुना के घाट पर रहेंगी और लोग हजारों आते रहते हैं तो जब वो आप लोगों को देखेंगे, आपका ज्ञान सुनेंगे, तो वो तो बिल्कुल प्रभाव में आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपका एक बहुत बड़ा आश्रम बन जाएगा। तो हम भी भोले भाले बच्चे थे, हमने कहा ये अनुभवी आत्मा है कह रहा है तो चलो ठीक है, इस मंदिर का भी मुद्दा पूरा हुआ है। तो हम वहां से सामान वामान लेके, सामान भी कौन सा होगा जान सकते हो, थोड़ा सा ही सामान था, उठा करके हम वहां गए। शाम को 7 बजे जाके पहुंचे तो देखा कोई कमरा ही नहीं है, जमुना बह रही है दूर और यहाँ जंगल ही जंगल है, कमरा कोई है नहीं। तो हमने कहा भाई तुमने कहाँ लाया है? तो एक ऐसा था गोडाउन, समझो इस तरफ भी दरवाजा नहीं और इस तरफ भी नहीं, सिर्फ दो दीवारें हैं और ऊपर की छत है और एक थला सा बना हुआ है। कहा तुम तो देविया हो, तुम्हारा रक्षक स्वयं भगवान है और तुम यहाँ बैठो तपस्या करो, लोग आप ही आपके पास आते रहेंगे, यहाँ ही रहो। हमने कहा हम तो बाबा ने मैलों में रखा, बाबा ने कहाँ कहाँ हमको रखा और अभी हम कहाँ आके पहुंचे हैं। परंतु बस हमने कहा ड्रामा और बाबा, बाबा को दिल से याद किया, हम सो गए। पर सोए कैसे? एक बहन सोती थी और एक बहन जागती थी, अलर्ट होके बैठते थे योग तपस्या का वायुमंडल, क्योंकि दो दरवाजे हैं नहीं और पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। पर हम निर्संकल्प होके बाबा की याद में एक बहन को कहते सो जाओ और एक बहन जागती रहती है। ऐसे करते करते 3 दिन के अंदर हमने एक विचित्र सीन देखी। एक पहलवान था, वो रोज डंडा उठा करके हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता ही रहता था, चारों ओर चक्कर लगाता ही रहता था, डंडा ठोकता था तो हमको आवाज आता था। हमने कहा ये पहलवान है, यहाँ कोई सेठ तो है नहीं, कोई पैसे वाला लोग नहीं, ये पहरा किसके ऊपर देता होगा? कोई मकान दुकान तो है नहीं, पता नहीं ये पहरा क्यों देता है। हमने पूछा भी नहीं, हम चुप करके बैठे रहते थे। तो 15-20 दिन के बाद वो पहलवान हमारे पास 20 पहलवानों को लेकर के आया। सब 20 पहलवान, सब वो लंगोटी पहनते हैं ना, मोटे ताजे, इतने हटे कटे, एक दो के पीछे लाइन लगा के हमारे पास आ रही है और वो दंडवत प्रणाम करके सो गए हमारे सामने। ऐसे दंडवत प्रणाम कैसे की जाती है? करो करो करके दिख लाओ, ये देखो। तो ऐसे दंडवत प्रणाम करने लग गए। हमने कहा ये क्या करते हैं? तो हम तो बच्चियां थी और इतनी एज बड़ी तो थी नहीं हमारी, तो ये कैसे हमारे पास आ रहे हैं? फिर उनको बिठाया, हमने पूछा भाई आप यहाँ कैसे आए, आप क्या समझ करके यहाँ आए हो? तो कहा बहन जी आप सच्ची सच्ची देविया हो, हमारे को परमात्मा ने आवाज दिया है कि तुम्हारे घाट पर दो देवियां तपस्या कर रही है, तुम्हारा काम है देवियों के इर्द गिर्द सेवा करना, पहरा देना। हमारे तो कपाट ही खुल गए, तो बाबा कैसे ऊपर से हमारी रक्षा कर रहा है? तो कहा तो एक दिन मेरे मन में संकल्प आया कि आज हमारा कुश्ती का दिन है, कुश्ती लड़ते ना पहलवान लोग, तो अगर ये सच्ची देवियां है तो मेरी जीत होंगी, मैंने सेवा की है, निष्कामता से सेवा की है, तो अगर ये सच्ची देवियां हैं तो मेरी जीत होनी चाहिए, अगर झूठी हैं तो हार हो जाएंगी, तो फिर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। अपने मन में एक शर्त लगा दी। तो अपने मन में जो शर्त लगाया तो उनकी जीत हो गई, जीत हो गई। तो दूसरे दिन तीसरे दिन एक दूध का मटका, दूध का एक बड़ी क्या कहें उसको, पीतल की गर्वी इतनी भर करके आया, चीनी नारियल और 20 रुपया, ये पहली मदोगरी हमको मिलती है, पहली मदोगरी। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर आलमैटी बाबा ने उसको तैयार किया और हमने तपस्या की। तो कहते हैं कि ये आप स्वीकार करो। हमने कहा भाई हम तो ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं, हम तो 14 साल तपस्या करके आए हैं, हम किसी का भी अन्न जल नहीं स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं क्यों? आपने हमारी सेवा की, हमको विश्वास बैठा तो आपने हमारी सेवा की ना, अभी हम आपके पास आते रहेंगे और जो कुछ आपके पास है वो हम लेते रहेंगे, पर ये आपको जरूर स्वीकार करना होगा। हमने सख्त मना की कि भाई ना हमारे पास कोई अंगीठी है जिसमें पकाएं, न चावन है जो डाल करके खाएं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है खाने पकाने का, तो आप ये ले जाओ। वो कहने हम सब लाके देंगे पर आपको ये खाना पड़ेगा। फिर हमने कहा चलो, आपस में सोचा भोग लगाएंगे, भोग लगा के इनको कटोरा भर भर के खिला देंगे, हम थोड़ी चकाचुकी करेंगे।
पहली मधोगिरी बाबा ने भेजी है तो चलो कुछ काम करेंगे। फिर उन्होंने सब प्रबंध दिया और हमने बाबा की याद में खीर बनाया। खीर बना के ना फिर सबको हमने कहा कि आप अपने वहां से स्थान से कोई ऐसा प्रबंध पता बता लेके आओ जिसमें हम आपको खीर दे दें। तो वो कटोरी लेके आए, हमने खीर खिलाया और बाबा को भोग लगा के ये पहला समझो हमारे पास मधुगिरी आती है। तब तक कराची में तो हम लेते ही नहीं थे किसी से भी। खैर फिर उसकी भावना बैठी पहलवान की। फिर जो भी कोई सेठ आता था वहां विश्राम करने या मालिश कराने या स्नान करने, उनको वो हमारे पास भेज देता था। तो अच्छे अच्छे सेठों को हमारे पास भेज दिया। फिर सारा दिन हम उनकी सेवा करते रहते थे, पर स्थान तो है नहीं, बगीचे में सेवा करते थे। वो कहते बहन जी आप लोग कहां सोते हो? बताया ये स्थान। कहते ये तो स्थान ही नहीं है, आप देवियां और आप ऐसे घाट पर रही पड़ी हो, हम आपको कमरा दिलाते हैं। फिर उन्होंने एक अच्छा कमरा दिला दिया। थोड़ा दिन तो बाबा के एक बल एक भरोसा, थोड़ा दिन तो हम रहे। फिर एक कमरा मिल गया, भंडारा मिल गया, भोजन का भी स्थान मिला और बहुत अच्छी तरह से हम रहे। फिर वहां एक माता आ गई जिसको अपनी गाड़ी थी और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मकान थे, पूरा घंटा घर भरा बना हुआ था उसका। तो वो माता रोज जमुना पर स्नान करने आती थी रोज। उसको पता लगा कि इस घाट पर देवी आई है, तो उसने हमको देखा, हम लोगों से बात की और कहा मैं विनती करती हूं कि शहर के अंदर बहुत अच्छा मेरा मकान बना हुआ है, एक बड़ी धर्मशाला है, उनके साथ कमरा भी है, हम आपको वो सब प्रबंध देंगे, आप शहर के बीच में चलो, ये सेवा यहां के बजाय आप वहां चल के करो। तो उनके आग्रह पर देखा माता बहुत अच्छी है, रॉयल है, भावान है। फिर उनके आग्रह पर हम शहर में चले गए, जमुना घाट छोड़ा और शहर में गए। तब तक आप समझ सकते हो कि 14 साल के बाद हम निकले और जंगल में जाके पहुंचे और जमुना के किनारे पर बयाबान लगा पड़ा। रात्रि को तो देखो कुछ भी नहीं आवाज है। ये पहलवान को बाबा ने टच किया, उसने हमारे को हमारी समझो एक संभाल की, मदद की। खैर फिर हम शहर के बीच में आ गए। शहर के बीच में आए तो वंडर, एक बार किसी माता ने सुना, उसने किसी सत्संग में कह दिया कि माउंट आबू से 4 देवियां आई हैं और वो योग कराती हैं, तो जिनको भी आना हो शाम को 6 से 8 बजे तक आ सकती हैं। फुल बड़ा हाल था, समझो ये जहां ये सोफा पर है ना उनसे इस चौक तक इतना बड़ा हाल था, शादियों का हाल बनाते ना बड़ा ऐसा, सारा हाल छकाछक हो गया। फिर हमने ओम की धुनी लगाई, ज्ञान सुनाया, फिर योग कराया वारी वारी एक एक बहन ने। फिर हम चारों बहनें योग में बैठ गए। तो दुनिया के लिए 4 बहनें योग में बैठना, दृष्टि खुली रहे, तो उनको इतना अच्छा लगा कि बस देखते 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 कई माताएं भाई ध्यान में चले गए। कोई इधर से आवाज आ रहा है, कोई का उधर से आवाज आ रहा है, कोई का इधर से आवाज आ रहा है, ट्रांस में। कोई कृष्ण को देख रही है, कोई रास रचा रही है, कोई ज्योति ज्योति प्रकाश प्रकाश देख रही है, कोई बाबा ब्रह्मा को देख रही है, भिन्न भिन्न साक्षात्कार। तो सारी सभा को पता लग गया कि इन बहनों के अंदर योग में इतनी शक्ति है, जो ये जिनको भी दृष्टि देती है ना वो ध्यान में चला जाता है। मानो वो बात पर्सनल हो गई कि ये बहनें दृष्टि देती हैं, इससे वो ध्यान में चली जाती। तो शहर में धमाधम मच गई, लोगों का आना शुरू हो गया और हमारा ज्ञान सुनाना शुरू हो गया। फिर कई माताएं ऐसी जोर से ध्यान में गई जो 4-4 दिन 6-6 दिन घर में जाती हुई भी ध्यान में ही है, सारा सारा रात उसको नशा चरा हुआ है। तो उनकी लौकिक पत्नी ने कहा ये कौन बहन आ गई है माउंट आबू से, ये कौन सी तपस्वी बहन आ गई है, ये क्या हो रहा है, हमारी घरवाली का क्या हाल है, ऐसा सारी सारी रात ध्यान में। तो लोग गरम गरम होकर हमारे पास आते थे, तो जब वो गुस्से में आते थे और हमको आके देखते थे योग में, तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाता।
बोलता है ये बहने तो कुछ नहीं करती है, बहने तो ज्ञान सुना के अपने योग में बैठ जाती है, ध्यान में जाने वाले अपने आप चले जाते हैं। तो शुरू कोई शक्ति है, इनके पीछे कोई शक्ति है। तो ऐसे रोज ही होता था, हर रोज होता था, कभी कोई ध्यान में जाता है, कभी कोई, कभी ये मदद थी बाबा की, बड़ी भारी मदद मिली दिव्य दृष्टि की। ये आवाज नेहरू तक चला गया और इंदिरा गांधी तक चला गया। तो जब नेहरू तक चला गया तो नेहरू ने कहा कि ये लेडीज की संस्था है, इनकी जांच होनी चाहिए कि वो ऐसा क्या करती है। तो इंदिरा ने क्या किया, कांग्रेस कमेटी की 4 लेडीज को उसने तैयार किया। तो कांग्रेसी कपड़ों में थी और थोड़ी मोटी ताजी, पर्सनालिटी भी अच्छी थी उन्हों की। तो मातों के बीच में कोई इधर बैठी तो कोई उधर, तो कोई उधर तो कोई उधर, तो हमारा ध्यान तो गया कि कोई स्पेशल बात है, पर तो कौन सी बात है ये हम कैसे समझे। तो जैसे हमने देखा वो सामने बैठ जाती हैं, तो जब माताएं ध्यान में चली जाती है ना, तब वो उनके इर्द गिर्द में बैठ जाती हैं। तुमको क्या अनुभव हुआ, तुमने क्या देखा, ऐसे ऐसे करके प्यार से उनसे सारा पूछ लेती थी। तो उन लोगों को भी अच्छा लगने लगा, बोला ये तो कोई ईश्वरी शक्ति है, ये बहनें कुछ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये बहनें कोई विशेष मिसमेरिज्म करती है या किसी को विशेष बुला करके सामने बिठा के ऐसे करती है, ये तो जनरली यो करा रही है। तो जो रोज रोज हमारा ये आवाज इंदिरा गांधी तक चला जाता था, तो उसने रिपोर्ट हमारी अच्छी दी, बोला हमको इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग की परियां आ गई है। उस समय का वातावरण ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं धरा पर आ गए। तो हम तो उन्हों को देखने में मगन हो जाते हैं और वो जो अनुभव सुनाती है ना वो रियल होता है, उनकी आंखों से पता लगता है, उनकी सूरत से पता लगता है, उनके हर बोल से पता लगता है। तो मतलब इस प्रकार से रिपोर्ट हमारी रोज अच्छी चली जाती थी। ऐसे करते करते अब हम क्या करें, तो उसका एक बालक था, वो एमपी था। ये सब बातें मैं क्यों सुनाती हूं कि स्थापना के कार्य में मदद भी बाबा की बहुत, हमारी हिम्मत बाबा की मदद, तो विघ्न भी आते थे और विघ्न फिर खत्म भी हो जाते थे। ये आए दिन हम चमत्कार देखते थे, विघ्न ऐसा आता था ऐसा, जो हम समझते थे अभी ये तोड़ेंगे, इस सत्संग को तोड़ेंगे, मकान में कुछ करेंगे, तूफान मचाएंगे, लेकिन वो विघ्न जैसा ऐसे आता था ना वैसा ही थोड़ी धीरे धीरे शांत हो जाता था। ये चमत्कार हम रोज देखते थे। तो जैसे हमारा ऑलमाइटी बाबा में निश्चय और पक्का होता गया, बाबा ही हमारा शिक्षक है, बाबा ही हमारा रक्षक है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ साथ बाबा है। और जहां कहीं ऐसा कोई मायावी पुरुष आ जाता है तो बाबा हमको बहुत मदद करता है, बुद्धिमान का बुद्धि है वो हमारी बुद्धि को टच करता है। तो ऐसे करके फिर ये जो माता है ना, तो उस माता को उसका जो बच्चा था एक, वो एमपी था, तो गवर्नमेंट तक बात चली गई। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम अपनी माता जी को कहो कि ये माउंट आबू से थोड़े समय के लिए आई हुई है, शहर में 2 आवास हो गए हैं, भ्रांतियां फैलती जा रही हैं, तो इनको तुम्हारी माता जी एक बार छुट्टी दे दे, फिर वो भले दूसरी बार आवे पर अब वातावरण शहर का थोड़ा शांत रहे। लोग कहते ये जादूगरनिया है, ये मिसमेरिज्म करती है, ये ऐसा करती है, इसलिए थोड़े समय के लिए आपकी माता जी इनको अपने मकान से छुट्टी कर दे। माता जी का इतना दिल लग गया, जो उसको औलाद एक ही ये बच्चा था, वो भी गोद में लिया हुआ था, अपना औलाद नहीं, तो उनको तो भगवान मिल गया, उनकी धर्मशाला पवित्र हो गई, सत्संग हो रहा है, वो तो इतनी खुश जो छोरे नहीं। पर लाचारी हालत में हमको कहा कि आप एक बार जाओ, क्योंकि बाबा का घर तो है ही है आप सबका, एक बार जाओ, युक्ति से मैं क्या करूंगी, अलग कोई मकान दिलाऊंगी, खर्चा मैं करूंगी, और अलग किसी और माता के द्वारा आपको निमंत्रण दिलाऊं, आपको एक बार जाना पड़ेगा। मैं दुख से आपको कहती हूं, वैसे मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूं, अंत तक नहीं छोड़ूंगी, परंतु थोड़े समय के लिए मेरा बेटा भी शांत हो
और गवर्नमेंट के तरफ से ये आया है आवाज,
तो फिर हम लोगों ने हम अंदर खुश हो गए,
अच्छा है हम तो बाबा के पास चले जाएंगे। बहुत ही सेवा की, हजारों को संदेश दे दिया। हमको क्या पता संसार कितना बड़ा है, हमने सोचा दिल्ली के 50 स्थानों पर भाषण किया तो बस सारे संसार को पैगाम मिल गया। तो हम खुश हो गए, बाबा ने कहा सबको पैगाम दो, हमने तो दे दिया, हम अभी चले जाएंगे बाबा के पास। जब हम लौट करके बाबा के पास आए, बाबा को पत्र द्वारा खबर दी, तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा बच्ची तुम बाबा का एक दुकान ज्ञान रत्नों का खोल करके तुम बंद करके आई हो, एक भी दुकान तुम जमा नहीं सकी। मैंने कहा बाबा हजारों को संदेश दिया, हजारों को मना, हमको लगता था कि सारे संसार को संदेश दे दिया, हमको क्या पता दिल्ली से आगे पीछे कौन से देश है, क्या क्या है, हिंदुस्तान का नक्शा भी पूरा नहीं देखा, देश कितना बड़ा होता है हमको क्या पता, और हम बच्चे भी थे, बस हम समझते हमने सारे संसार को पैगाम दे दिया। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची अभी तो तुम दिल्ली के किसी कोने में भी बाबा का संदेश नहीं पहुंचे हैं, अभी तो एक दुकान खोल के बंद करके आई हो ना, आगे चल के देखना तुम्हारे 108 सेंटर खुलेंगे और गली गली में सच्ची गीता पाठशालाएं खुलेंगी। तो मेरी से आवाज निकल गया, रर निकल गया। मैं कहा बाबा 108 सेंटर खुलेंगे, 108? कहते हाँ हाँ बच्ची हाँ। मैंने कहा एक सेंटर खोलने में इतनी मुसीबत आ रही है, अब 108 सेंटर कौन खोलेगा, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा? तो जैसे बुद्धि काम नहीं करती थी, पर बाबा कहता है, बाबा प्यार भी बहुत देता है और शिक्षा भी देता है, हिम्मत भी, हुलास भी, नहीं अभी कमजोर हो, सैन्य शक्तियां नहीं हो, ज्ञान की प्राकाष्ठा नहीं है, तो बाबा थोड़ा इशारा भी देता था, बल भी भरता था। फिर जब हम आए ना हैदराबाद उधर से लौट करके, 15 दिन के अंदर इतने ढेर के ढेर विलापों के पत्र आने शुरू हो गए। सबूत बाबा को मिला, इन बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की है, बहुतों को सुख दिया है, तब विलापों के पत्र आ रहे हैं, बाबा ये अमृत पिलाते पिलाते ये बहनें चली गई हैं, हम रह नहीं सकते हैं, हम मछली नीर बगैर रह नहीं सकते हैं, बाबा इनको जल्दी भेजो, बाबा इन्हों को जल्दी भेजो। तो फिर हमने लिखा कि हम जल्दी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कोई भी छोटा मोटा स्थान पहले ले लो, फिर धीरे धीरे शिवाओं की वृद्धि होती जाएंगी। फिर उन्होंने कोशिश की, मकान लिया, उस माता ने गुप्त मदद की और फिर हम वापस चले गए दिल्ली में। जब वापस गए तब तो पक्का लक्ष्य लेके गए, अब फिर वापस नहीं आएंगे, अब दुकान को जमा नहीं है हमको, बाबा का संदेश, बाबा का झंडा लहरा नहीं है। फिर हम जम गए, फिर तो जहां जहां बड़े बड़े सत्संग होते थे, बड़े बड़े महात्मा लोग होते थे, उन्हों के पास जाना, जो बड़े बड़े लोग होते उन्हीं के पास जाना, तो ऐसे जितना कर सकते थे पैदल यात्रा करते थे, पैसे होते नहीं थे, खर्च इतना है नहीं, बसों में सारा दिन घूमते थे, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे हम लोग रहे। फिर ऐसी सेवा करते 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 इलाहाबाद का निमंत्रण मिल गया, कुंभ का मेला, तो कुंभ के मेले में हमारी दादी गई प्रकाशमणि और हमारी गंगे बहन, मैं दिल्ली के अंदर ही रह गई दिल्ली की सेवा में, और दो बहनें जो हमारे साथ आई थी ना वो फिर वहां चली गई इलाहाबाद के मेले में। अब इतना बड़ा इलाहाबाद का मेला, लाखों लोग वहां स्नान करने आते हैं, हम बहनों के पास पैसा ही नहीं है, लिटरेचर छपाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, अनाज पानी चाहिए, कुछ भी नहीं है, पर हम एक बल एक भरोसा लेके हम चले गए। फिर जिस किसी की सेवा की वो जब प्रभाव में आया, उसको कुछ सत्यता का अनुभव हुआ, तो उन्होंने मकान दिया, मकाने के साथ भोजन का भी प्रबंध दिया कि आप पकाओ खाओ, हम आपको अलग प्रबंध देते हैं, आप कुंभ के मेले की सेवा करो और जो सहयोग मेरे से होगा मैं दूंगा। लिटरेचर छपा करके दिया और भी जो सेलिब्रेशन चाहती थी वो सब उन्होंने दिया, तो कुंभ के मेले में संदेश दिया। उनमें से फिर दूसरा निमंत्रण तैयार हुआ कानपुर का, कानपुर का एक बड़ा भारी सेठ था, उसे सेठ ने निमंत्रण दिया। फिर वहां से एक दूसरा निमंत्रण मिला, तो एक बहन इधर गई, तो एक इधर गई, तो एक इधर गई, निमंत्रण पिछाड़ी निमंत्रण खुलते गए। तो कानपुर में जो एक बाबूजी था, बहुत बड़ा सेठ माना हुआ था, बहुत बड़ा मकान था और बहुत बड़ा बाग बगीचा था, परंतु वो जो सेठ था ना, वो साधना बहुत करता था, भगवान का दर्शन मुझे हो। तो उसने एक जाली का कमरा बनाया हुआ था, जाली लगती है ना जैसे दरवाजों को, तो ऐसे जाली का अलमारी बनाई थी बहुत बड़ी, उसके अंदर ही बैठता था और स्त्री का मुंह नहीं देखता था, अपनी स्त्री के सिवाय और किसी का मुंह नहीं देखता था। साधना में भक्ति में लगा रहता था, पैसा बहुत, फैक्ट्रियां चल रही है, ये चल रहा है, पर ये बेचारा साधना में। अचानक उसके वाइफ को पता लगा कि कोई दो देवियां माउंट आबू से आई है और इस प्रकार से वो सत्संग आत्मज्ञान देती है, तो उस माता ने निमंत्रण दिया। तो हमारी दो बहनें उसी के मकान में चली गई। मकान में उसने अलग एक पोर्शन दिया था जिसमें तीन कमरे थे, अलग पोर्शन में हम रहते थे और माता जी की सेवा करते थे और बाबू जी की सेवा करते थे। तो बाबू जी वैसे किसी का मुखरा नहीं देखता था, किसी फीमेल का नहीं, परंतु एक दिन क्या हुआ कि हमारी दादी प्रकाश बनी है ना, उनकी एक बहन बड़ी थी, सती बड़ी माता थी, अच्छी योग युक्त थी, वो जैसे योग करा रही थी ना, तो योग का वायुमंडल इतना पावरफुल हो गया, जो बाबूजी अंदर जाली के कमरे में बैठा हुआ ना, वो उठ करके बाहर आ गया सत्संग में। बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे खींच रही है, कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है। इसलिए वो जाली की अलमारी से निकल करके ना, उस सत्संग के हाल में पीछे बैठ गया, सब आगे औरतें और भाई भी थे और वो पीछे बैठ गया। तो जैसे बैठ गया ना, उसको देखता रहा सती बहन को, तो उनको साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा साकार और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। तो वो देखता है दो बाबा है, एक साकार में बैठा है और एक उनके ऊपर सब पूरा लाइट में फिरता है। तो वो जो फिरता है ना, उसको वो देखता रहता है, तो देखता है ये जो साकार है वो धीरे 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 करके ना उस तक पहुंच जाता है, फिर दोनों मिलके एक हो जाते। कभी देखते हैं वो ऊपर वाला फिरता धीरे 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 आके इस साकार में समा जाता है और ये साकार प्रकाश में हो जाता है। तो दो बाबा का खेल देख करके वो पीछे मुस्कुराता रहता था, आंखें बंद है पर मुस्कुराता रहता था, खेल देखता रहता था। आखिर 15-20 दिन के बाद उसको पता लगा कि ये वो बाबा है जो माउंट आबू में है, ये ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा कुमारियों का बाप, और माउंट आबू में है और उसने महायज्ञ रचा हुआ है, भगवान उसके तन में आता है। तो बोला, मैं तो जरूर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे जरूर जाना है। तो अपने वाइफ को कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम ऐसे मीठे बाबा से जरूर मिलेंगे जिनका घर बैठे मुझे दर्शन हो रहा है। तो वो माउंट आबू में आ गया अपनी वाइफ को लेकर के। तो जैसे आया ना, तो वो बाबा का ये भरतपुर राजा की कोठी, पहला नंबर कोठी वो थी हमारी, उस कोठी में वो अमृत वेले बाबा योग कराता था ना, तो योग में आके पीछे बैठ जाता था, पीछे बैठते ये सारा समय लीला देखता रहता, वही लीला जो वहां देखता था। बाबा ब्रह्मा बैठा है, बाबा ब्रह्मा फिरिश्ता होता 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 एकदम वो जो ऊपर वाला फिरिश्ता है ना, वो एकदम मिल जाता है, एक हो जाता है, दो से एक। कभी वो देखती है ऊपर वाला धीरे 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 नीचे उतरते उतरते इसमें समा जाता है, तो ये संपूर्ण ब्रह्मा हो जाता है। ये खेल देखता देखता बाबा को कहा, बाबा मेरा दिल बहुत खुशी में नाचता है, मैं अनुभव करता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, मेरी साधना मेरी पूरी हुई, मुझे आपने घर बैठे ये दर्शन दिया है, अब मेरा अनुभव करता है, मैं अपने सगी वालों को सबको लिख करके भेजू कि सब वो माउंट आबू में आ गई। तो उसका बच्चा था, सिरदार था, वो खुद सिरदार था, पर वो सिरदार डारी नहीं थी, पर मोना था, पर वास्तव में सिरदार परिवार का था। तो उसने क्या किया, यहां आकर के ना अपने एक मैनेजर को लिख करके भेजा, तो तुम यहां आओ और यहाँ जो आता है माउंट आबू में ना, उनको भगवान का दर्शन होता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो वो मैनेजर बुजुर्ग था, उसकी वाइफ और ये दोनों आ गए बाबूजी के लिखने पर। तो वो जब आए तो मम्मा योग करा रही थी, दिन का समय 11 बजे का टाइम था, मम्मा भोग लगता है ना, तो भोग के समय मम्मा भी बैठी थी। तो वो जैसे आके सामने ऐसे बैठे ना, 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में जो उसकी वाइफ थी ना, वो ध्यान में चली गई। उसने लक्ष्मी नारायण की दरबार देखी और लक्ष्मी नारायण को देखा, तो उनको सोने की शीशे की चूड़ियां पड़ी थी ना, तो वो ऐसे 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 छिम 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 छिम, हम सबकी आंखें खुली, ये क्या हो रहा है। तो देखा ये माता ध्यान में चली गई है, जोर से ध्यान में चली गई। बहुत उसको हिलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर नशा खूब चल गया। फिर उसने अपने पति को भी बताया और हम सबको बताया, कितनी मैं भाग्यशाली हूं, आज 5:00 बजे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का ऐसे साक्षात्कार हुआ। मम्मा को तो चटक गई, मम्मा अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैंने अब आपको पहचान लिया है कि आप श्री लक्ष्मी हो और साधारण रूप में हो। मम्मा मैं आपकी बच्ची हूं, मम्मा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो चलो एक मैनेजर 3 दिन रहा, बहुत गहरा साक्षात्कार हुआ और निश्चय बुद्धि होकर के वो कानपुर में चला गया। फिर दूसरा मैनेजर था, वो यंग था, जवान था, तो उसको लेकर के भेजा, बेटा तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ और यहां भगवान का साक्षात्कार होता है, मुझे भी हुआ है, तुम भी आ जाओ। तो वो भी आया, जल्दी जल्दी भाग करके आया। आया तो 2 दिन के बाद बाबा हमको यहाँ बाबा की पहाड़ी है ना, जहां पर जाती है घूमने के लिए, विदेशी भाई बहने बाबा की पहाड़ी घूमने के लिए जाते हैं, तो उस पहाड़ी पर बाबा हम बच्चों को लेके गया, काफी सारे भाई बहन थे। तो जब हम गए तो वो मैनेजर भी गया और उसकी वाइफ भी गई। वाइफ यंग थी और बच्चा छोटा था, तो वो घर में बैठी, वो मैनेजर चला गया। तो बाबा जितने भी बच्चे पहाड़ी पर बैठे थे ना, तो बाबा ने सबको दृष्टि दी। तो दृष्टि दे करके बाबा ने ऑलमाइटी बाबा को कहा, बाबा मैं इन सब बच्चों को आपके पास भेजना चाहता हूं, आप इनको फट से अपने पास बुला लो। तो जैसे बाबा, तो ऐसे ऐसे होने लगा। तो वो जो मैनेजर है ना, वो बड़ा जोर से ध्यान में चला गया और जोर से गया तो कृष्ण को देखा, तो कृष्ण के पीछे भागता रहे, अरे उनको कौन संभाले। तो कृष्ण उधर तो उसके पीछे, फिर कृष्ण इधर उसके पीछे, रास करे खूब 2 घंटा उसने लगा दिया पहाड़ी पर। बड़ा मुश्किल से उसको पकड़ करके नीचे लाया। तो उसकी औरत ने देखा कि मेरे आदमी को ये सब पकड़ करके ले आ रहे हैं, तो वो तो रोने लगे, मम्मा अभी क्या होगा, मेरा पति ध्यान में चला गया माना भगवान के पास पहुंचा, अब ये कैसे उतरेगा, मेरा क्या हाल होगा, मेरी छोटी बेबी है, मम्मा मेहरबानी करो इसको ध्यान से उतारो। तो मम्मा ने उसको कहा, घबराओ नहीं, ये तो भाग्यशाली आत्मा है जिसको ऑलमाइटी बाबा ने साक्षात्कार कराया है, कृष्णपुरी का साक्षात्कार हो रहा है, तुम डरो नहीं, एक आधा दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा, तो डरो नहीं। मम्मा ने बहुत उसको प्यार किया और उसको मन हौसला पैदा कराया। फिर धीरे धीरे 2 दिन के बाद खूब नशा चढ़ा हुआ था, तो बाबूजी बहुत खुश हो रहा था कि मेरे एक मैनेजर के वाइफ को हुआ और दूसरा मैनेजर खुद ही ध्यान में चला गया। तो बाबूजी को दिन पर दिन नशा चढ़ता जाए। उसने फिर क्या किया, तीसरा उसका बेटा था, वो फिर यंग था बिल्कुल, और अभी नस्ती की थोड़ा ही टाइम हुआ था शादी की थी, उसको भी लिखा कि बेटा पाल तुम जल्दी जल्दी आ जाओ माउंट आबू में, अगर तुमको भगवान का दर्शन करना है तो जल्दी माउंट आबू में आ जाओ। और हम लोगों को पता ही नहीं कि बाबूजी ऐसे कोई लिखा पढ़ी कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो सबको कहते हैं बाबा के हाथ में, हमारे थोड़े हाथ में है। और बाबूजी ने कहा जो आएगा ना उसको साक्षात्कार जरूर होगा। अरे भाई बाबूजी ने तो एक अपने ही निश्चय से कर दिया। तो जब 30 ये बच्चा आया तो बच्चे को पता लगा कि मेरे एक मैनेजर की वाइफ को साक्षात्कार और दूसरे मैनेजर को साक्षात्कार, तो ऐसे न हो कि मेरे को भी कुछ हो जाए। पर पिता का आज्ञाकारी था इसलिए आ गया। तो जब बाबा के सामने फल लेके आया, फूल लेके आया और भावना के साथ आके बैठा, तो उस भाव से बैठा, मेरे बाप का गुरु है बाबा, मेरे बाप का गुरु है, तो मैं अपने बाप के गुरु का सत्कार करता हूं। तो बाबा की ने दृष्टि पड़ी, तो जैसे बाबा की दृष्टि पड़े तो वो आंखें नीचे कर दे। उसको अंदर में संकोच था कि कहीं मैं भी न ध्यान में चला जाऊं। तो 3 दिन आंखों को छिपाता रहता था, जहां मम्मा की दृष्टि पड़े तो दृष्टि नहीं लेता, बाबा की दृष्टि पड़े तो दृष्टि नहीं लेता। 3रे दिन उसने कहा मैं जाता हूं। 3 दिन पूरा हुआ पर बाबा के प्यार में था, बाबा के साथ बैठता था, बातें भी करता, पर दृष्टि नहीं लेता था। अब देखो वंडरफुल बात, जन्माष्टमी का दिन था, तो आपको पता है जन्माष्टमी के दिन विशेष अभिव्यक्ति रास होती है, कई बच्चे ध्यान में जाते। शुरू शुरू में तो ये बहुत चलता था ना, तो उस दिन जैसे हम योग में बैठे थे तो वो पाल जो था वो भी पीछे बैठा हुआ था। तो जैसे वो पीछे बैठा हुआ था तो हमारी 1-2 बहन ध्यान में चली गई, ध्यान में चली गई, तो उसने उसमें भी जो बाबा की धर्म पत्नी थी ना, जिसका नाम जसोता, तो जसोता इतनी जोर से ध्यान में चली गई, उसने बाबा को बाबा के रूप में नहीं देखा पर छोटे से कृष्ण के रूप में देखा, छोटा सा है। तो उसने क्या किया, बाबा को पकड़ करके ना ऐसे गोदी में उठा लिया, इतना बड़ा बाबा और वो छोटा सा कृष्ण समझ करके एकदम से पकड़ लिया। तो हम सब ने उठ करके बाबा को पकड़ा, किसी ने पांव से, किसी ने सिर से देरी से हंसती है मैंने तो जब ऐसे पकड़ा तो वो पाल आश्चर्य में देखता रहा कि ये आज क्या हो रहा है। तो ऐसे पाल की आंखें खुल गई, तो आंखें खुल गई तो ऐसे बाबा को गौर से देख रहा था, और बाबा की बहुत फुल फोर्स में प्रवेशता थी, शिव बाबा की इतनी प्रवेशता थी। तो जैसे ने बाबा को जसोता से छुरा करके बाबा खड़ा हुआ ना, तो बाबा ने एक दृष्टि ऐसे की और पाल की दृष्टि बाबा में अटक गई, बस फिर तो पाल ध्यान में चला गया। अरे वो पाल इतना हट्टा कट्टा था पहलवान के माफिक, और वो जो ध्यान में चला गया तो उसने श्री कृष्ण को देखा, तो उसने तो बाबा को पकड़ करके बाबा को प्यार किया, कृष्ण कृष्ण देकर के। और हम कहे ये सरदार की बाबा को डारी लगेंगी, हम बाबा को छुराते थे लेकिन वो छोड़ता नहीं था, नहीं मेरा बच्चा, बस प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उसकी जो मां थी ना पाल की मां, उसने उससे छुराने की कोशिश की, बेटा ये बच्चा मेरे को दो, 2 मिनट के लिए मेरे को दो, मेरा बच्चा है। नहीं नहीं मेरा बच्चा है, मेरा, प्यार करता रहे। मां ने जबरदस्ती बाबा को उठा करके अपनी तरफ खींचा, और इसके आंखों को एक भाई ने ऐसे से किया, उसको थोड़ा नशे से उतारा, तो जब देखा बाबा मेरे गोदी में तो एकदम उठ गया, बोला ये क्या हुआ क्या हुआ मैंने तो ऐसे किया नहीं। वो तो एकदम हैरान हो गया, असर उठ खड़ा हो गया, बोला बाबा बाबा कहां, मैंने कैसे किया, ये तो मेरे से भूल हो गई, पता नहीं कैसे मैंने किया। उनको बहुत नशा चढ़ा रहा, 3 दिन लगातार नशा चढ़ा रहा। फिर जब भी बाबा को देखता था फिर गुम हो जाता था, फिर कृष्ण देखता था। फिर जब जाने लगा ना वहां से जाकर के, उसको इतना बाबा के लिए प्यार पैदा हुआ, बाबा ही मेरा बाप है, बाबा ही मेरा बच्चा है, कृष्ण के रूप में वो मेरा बच्चा है और वैसे वो मेरा बाप है, मेरे बाप का भी बाप है तो मेरा भी बाप है। फिर उसने पहली बार वहां से जाके कानपुर से एक अच्छी ड्रेस, अच्छे कपड़े की ड्रेस बाबा के लिए, चांदी की खिरावा, चांदी की कटोरी, जैसे नहीं ठाकुरों की पूजा करते तो ठाकुरों के बर्तन होते हैं छोटे 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 छोटे, चांदी का चमचा, झिंझरा, ऐसे 4-5 चीजें लेकर के और पार्सल करा करके बाबा के पास भेजा, जैसे वो अपने बच्चे को गिफ्ट भेजता है। तो बाबूजी जो बाबा का बच्चा बन गया था ना, उसकी लाइन क्लियर हो गई। वो यज्ञ में कोई भी तन की सेवा करता था, मन से सेवा करता था, मधुबन में आता था, तो समझो उसके सब जितने भी मैनेजर थे वो भी सब निश्चय बुद्धि हो गए, उनका बच्चा भी निश्चय बुद्धि हो गया। तो उन सब ने मिलकर के बाबा को कानपुर में निमंत्रण दिया। पहले वो बाबा के पास आए, फिर उन्होंने कानपुर में बाबा को निमंत्रण दिया। वहां पर कानपुर में, तो कानपुर में उसका बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बाग था, तो बाबा के लिए स्पेशल अच्छे दो बड़े कमरे और सब प्रकार के नियम मर्यादाएं सब प्रकार की पालना सारे परिवार को कराई। बहु बेटे को अलग कर दिया, बोला ये बंगला मुझे बाबा के सेवा में लगाना है। फिर बाबा ने कानपुर के धरनी पर रह करके कानपुर निवासी भाई बहनों की सेवा की, जहां से अच्छे अच्छे वकील निकले, जज निकला, कई अच्छे अच्छे इंजीनियर थे। तो जो जो बाबा के संपर्क में आए ना, वो सेकंड में बाबा का हो गया, क्योंकि बाप की दृष्टि से पहचान मिल गई उनको, बाबा के वचन से पहचान मिली और बाबा की वाणी में फोर्स था। तो वाणी इतनी प्रभावशाली, जो सुनता था ना वो बाबा का हो जाता था। तो कानपुर में सेवाएं भी इस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होती गई। अभी तक भी लास्ट मोमेंट तक बाबूजी माताजी बाबा के बच्चे बन करके रहे, लास्ट मोमेंट तक। फिर एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है कि वो जो बाबूजी था ना, बाबा से इतना प्यार था, टू मच प्यार था, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, समझता भगवान ने मेरी सब आशाएं पूरी की। तो उसको एक बारी यहां जब आया माउंट आबू में, यहां आने वाला था, तो बीमार पड़ गया। उसकी दिल थी मैं बाबा के पास आऊं, पर वहां बीमार पड़ गया हार्ट का। तो दिल बहुत थी मैं बाबा को जरूर मिलूं, ऐसे हो नहीं सकता मैं चला जाऊं, मैं पहले बाबा से मिलूंगा। तो ध्यान में बहन एक गई और उसने कहा बाबा ने इसको 2 माह से आयु का दान दिया है और ये बाबा के पास जाएगा, बाबा से मिलेगा और पीछे फिर आके शरीर छोड़ेंगे। तो बरोबर ऐसा ही हुआ, उसको आयु का दान मिल गया 2 माह, जैसे मौत ही एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद वो बाबा के पास आया, बाबा से मिला, काफी दिन रहा। फिर उसके बाद जब माउंट आबू में गया ना, वहां कानपुर में ना, तब 3-4 दिन के बाद वहां जाके उसने शरीर छोड़ा। इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा ने एक एक स्थान से एक एक को निमित्त बनाया। तो कानपुर में बाबूजी या माताजी नंबर 1 रहे, अंत तक रहे, और लखनऊ में फिर दादा राम और सावित्री, उनका परिवार यहाँ अभी कोई एक मेंबर नहीं है जो आपको दिखाऊं, जिन्होंने हांगकांग में सेंटर खोला। तो लखनऊ में ये युगल निमित्त, हर स्थान से एक एक युगल जरूर तैयार होता था, जो पूरी जिम्मेवारी से वारस बच्चा बनकर के वो अपनी सेवा करता था। तो हर स्थान से, दिल्ली से एक बहन गई कानपुर में, तो कानपुर में सेंटर खुल गया। फिर कानपुर से एक बहन गई लखनऊ में, तो लखनऊ में सेंटर खुल गया। तो लखनऊ की भी हिस्ट्री अलग है, वो भी बहुत अच्छी है, बड़ी है। इस प्रकार से हर स्थान पर आलमैटी बाबा ने मदद बहुत की, साक्षात्कार की धूम मच जाती थी। फिर लोग जादूगर भी कहते थे और फिर साथ साथ विश्वास भी जिनको होता था वो मदद भी करते थे। तो ऐसे करते 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 आपको पता है ये सबसे पुराने सेंटर है, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ताबाद में, दिल्ली, बम्बई, कानपुर और लखनऊ। इलाहाबाद में भी सेंटर खुल गया, पर इलाहाबाद का सेंटर इतना वृद्धि को नहीं प्राप्त हुआ बड़ा। कानपुर में अच्छा बड़ा बन गया और लखनऊ में बड़ा बन गया, और अभी लखनऊ में भी बहनें अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की सेवा करती हैं। कानपुर में भी अच्छी अच्छी बहनें हैं जो हर प्रकार की सेवाएं करती रहती हैं। तो हमारे साथ जो पहली बार गई थी ना, जिसका नाम गंगे था, वो कानपुर में जब से गई वह कानपुर में जमी रही, कानपुर के आसपास भी सेवा करती रही। और मैं जो दिल्ली में थी तो मैं फिर चारों ओर चक्कर लगाती रही, जहां जहां सेवा केंद्र खुलता था वहां वहां चली जाती थी, जहां जहां सेवा केंद्र खुलता था वहां वहां चली जाती थी। तो ऐसे करते 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 आपको पता है हम पंजाब में रहे, हरियाणा में रहे, और पंजाब हरियाणा हिमाचल तरफ नहीं, हरियाणा में जितने सेवा केंद्र है उनमें हमने काफी टाइम दिया। फिर तो बाबा चारों ओर भेजता था, जहां जहां सेवा होती थी तो हमारा नाम बाबा के दिल पर असर चला रहता था कि बच्ची को भेजो, बच्ची को भेजो। और ये अभी हम फ्री हो गए हैं, जैसे बहुत बहने निकल गई सब बहने सेवा करती, हम बाबा के घर में वन प्रस्थ अवस्था में आ गए, ऐसा फर्क महसूस होता है। तो वहां सेवा करते करते ऐसे बाबा की वारस निश्चय बुद्धि बच्चे पैदा हुए। दिल्ली से जगदीश भाई पैदा हुआ, करोल बाग से बेजमुन भाई पैदा हुआ, फिर मुंबई में सेवाई रमेश भाई पैदा हुआ। मानो एक एक तो ऐसा मुख्य निकलता था जो सेवा यानी वारस, जिसको बाबा के वारस है ही बाबा का। तो इस प्रकार से सेवाओं की काफी वृद्धि हुई, उन्नति हुई। और मेरे को आज ये भी था कि मैं मम्मा के बारे में आपको बता दूं थोड़ा, अब 10 मिनट है, मम्मा की विशेषताएं सुना लेती हूँ, क्योंकि ये फिर नहीं तो अधूरी हिस्ट्री हो जाएंगी। रिकॉर्ड बीच में बजेगा, रिकॉर्ड के बाद फिर 10-15 मिनट और ले लूंगी, 10 मिनट, क्योंकि मेरे को कईयों ने कहा था बहन जी बाबा के बारे में तो आप बताती हो, मम्मा के बारे में नहीं बताती हूँ, ये भी उलहना मैं क्यों सुनू। तो आपको पता है मम्मा भी एक कुमारी थी, हमारे मुआफिकी थी, परंतु बहुत ही अच्छी सुशील थी, गुणवान थी, स्कूल में भी वो इनाम लेती थी और इंग्लिश में भाषण करती थी और हिंदी भी, हिंदी बोलने में भी अच्छी थी, गायन विद्या में अच्छी थी। मम्मा का गाना सुन करके सब मोहित हो जाते थे और मम्मा का रूप भी ऐसा था और अंदर का गुण इतना अच्छा था जो मम्मा के चेहरे पर न दिव्यता थी। तो जिस दिन बाबा के पास वो आई तो बाबा ने पहले दिन मम्मा को देखा और बाबा ने दिल ही दिल में उसको अपना वारस निश्चय कर दिया कि यही मेरे ज्ञान रत्नों की वारस बची बनेगी। और मम्मा ने जैसे बाबा को देखा तो मम्मा को ऐसा महसूस हुआ मुझे मेरा सच्चा पिता मिल गया, क्योंकि लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था थोड़ा इस समय पहले। तो जैसे न मम्मा को बाबा मिला, बाबा का मीठा रूप, बाबा के रूहानी दृष्टि, प्यार, तो मम्मा को लगा मुझे सच्चा गीता ज्ञान मिला और सच्चा गीता ज्ञान दाता बाप मिला। उस निश्चय से मम्मा चलती रही। गायन विद्या में अच्छी थी तो बाबा एक गीत बनाता था और मम्मा वो तर्ज निकाल के गीत सभा में गाती थी। तो जैसे बाबा में ज्ञान सुनाने की पावर और दृष्टि देने की पावर थी, ऐसी मम्मा भी जिस किसी को दृष्टि देती थी ना, वो भी ध्यान में चली जाती थी। और वाणी में शक्ति ऐसी, वाणी स्पष्ट और मधुर, बाबा के हर पॉइंट को, छोटी पॉइंट को उठा के उसका विस्तार कर देती थी, विस्तार करके और फिर सबके सामने ऐसे ढंग से स्पष्ट करती थी जो सबको मम्मा की वाणी प्रिय लगती थी। ऐसे करते करते मम्मा ने कई कन्याओं माताओं को तैयार किया, बड़ों को, जो बड़े बड़े लोग आते थे ना, मम्मा कोर्स कराती थी तो उनमें कोर्स के साथ फोर्स बढ़ जाता था और वो लाइफ का निर्णय करता था हमको यही बनना है, हमको देवता बनना है। और जो अंदर में विकार होते थे, दुर्गुण होते थे, मम्मा की क्लास कराने से, कोर्स कराने से उनके अंदर के विकार भाग जाते थे। उनको ऐसा महसूस होता था किसी देवी ने हमको ज्ञान दिया, ये साक्षात देवी है, इस देवी ने हमको अपने जीवन से प्रेरणा दी है, हमको उस पर चलना है। तो मम्मा में सरलता, गंभीरता, मधुरता, सहनशीलता, फिर रमणीकता, इस प्रकार अंतर्मुखता, इस प्रकार के काफी अच्छे अच्छे गुण थे। और वो हर बात में बाबा की आज्ञाकारी, जो जो बाबा ने कहा वो मम्मा करके दिखाती थी, देरी नहीं करती थी, सदा जी हां का पाठ पक्का था। जो जो बाबा ने कहा कभी मम्मा ने जिंदगी में ना नहीं की, ना माना नास्तक, हां माना आस्तक। हम ईश्वर के बच्चे, हम ना नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं जानते हैं, हमने ये काम किया ही नहीं है, हम नहीं करेंगे, नहीं का तो नाम ही नहीं था। इसलिए मम्मा ने शक्ति सेना तैयार की, कन्याओं को, माताओं को, पुरुषों को ज्ञान देना और गुणवान बनाना, मम्मा ने काफी अच्छी सेवा की। छोटे छोटे बच्चों को राज विद्या, रूहानी विद्या, तो बाबा ने तन मन धन सब मामा के नाम पर, मामा के साथ आठ शक्तियां और भी थी जिसमें दादी प्रकाशमन भी है, चंद्रमणि दादी, ऐसे कई फैमिलीज हैं जिनको आप नहीं जानते, उन आठ के नाम पर बाबा ने मिल्कियत को विल कर दिया, उसमें मम्मा भी एक थी। तो ऐसे करते करते मम्मा आज कुमारी हैं, मन में छोटापन लगता है, धीरे 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 मम्मा से साक्षात्कार ऐसा होता था श्री लक्ष्मी का, तो सबका मम्मा में भाव बैठने लगा। बाबा को देखते थे श्री नारायण रूप में और मम्मा को देखते थे श्री लक्ष्मी के रूप में, चाहे दोनों ऐसे सामने खड़े होते थे ना, रूप साधारण है परंतु साक्षात्कार ऐसा हो रहा है ये लक्ष्मी नारायण हमारे सामने खड़े हैं। दोनों की दृष्टि से हम खो जाते थे। जो हमारा भवन था, मामा बाबा सुनता था, बाबा खुश होता था कि देखो मामा, कहता था हम बच्चों को, मामा जो है ना वो बड़े से बड़ी सितार है, बाबा के हाथ में है छोटी सी बंसरी, अब मामा देखो कैसा बाजा बजाती है, तभी सरस्वती का गायन है, क्योंकि बाबा के मूल्य को स्पष्ट करना, सरल बनाना और सबके दिमाग में बिठाना ये मामा का काम था। जैसे माँ होती है ना भोजन को चबार चबा के खिलाते, ये मामा का काम। और फिर यज्ञ सेवा में मनसा में भी अच्छी, अमृत वेले उठना, एकांत में बैठना, फिर वाणी में अच्छी, फिर यज्ञ सेवा में हर प्रकार की सेवा मामा ने की। जरा भी मामा में वो नहीं था मैं मम्मा हूं, मैं काहे को ये स्थूल सेवा करूंगी, मम्मा खुद खड़ी होकर हर कार्य में पहले मम्मा अंगुली देती थी, मम्मा को देख करके हम सब करते थे, मम्मा को कहने की दरकार न पड़े मम्मा करती थी, उसको देख करके हम सब बच्चे करते थे। प्यार भी मम्मा का बहुत था, हमारा भी मम्मा से बहुत था, बाबा का भी मम्मा के ऊपर था, मतलब जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। तो मम्मा ने सारे यज्ञ की स्थूल सूक्ष्म पालना बहुत अच्छी तरह से की, रात रात जा करके अखंड योग कराना, और बाबा ने जो काम दिया है वो काम बैठ के हमसे कराती थी, खुद भी बैठती थी। बाबा ने बहुत बड़े बड़े कपड़े के वो कहे तो भर्त भर करके दो, भर्त को क्या कहते हो, कोई ऐसा शब्द बोलते हैं ना, भर्त, भर्त को क्या कहते हैं, सिलाई करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी, क्या कहते हैं ये शब्द। तो वो बाबा ने कहा ये सारा हमको बच्चों से लिखवा करके भरवा करके दे दो, 15 दिन में मम्मा ये काम करा के दे दो, बाबा को भेजना है फलाने जगह पर, भेजना है फलाने जगह पर। तो मम्मा 15 दिन में रात दिन जगा कर हम बच्चों को मम्मा बैठ के हमारे से काम कराती थी। तो हम बच्चे कभी कभी थक जाते, मम्मा आप बाबा को कहो ना 15 दिन के बजाय 20 दिन दे देना, 20 दिन में हम काम करके दे देंगे। मामा 5 दिन आप लो ना बाबा से, मम्मा हम थक जाते, आंखें थक जाते। मम्मा कहती अरे किसने डायरेक्शन दिया, आलमेटी बाबा का डायरेक्शन, और ये शक्ति से ना है, कहती 5 दिन और लो, नहीं जो बाबा ने कहा उसी दिन पूरा करके देता है, फिर उसी दिन हम पूरा करके देती थी। तो इस तरह से मम पर दादी जो बाबा की लौकिक में बच्ची है ना, वो आई है ना कलकत्ता से, तो अभी मधुबन निवासियों से नहीं मिली है, तो उनसे आज मिलेंगी और उन सबको टोली खिलाएंगी, फिर आपसे भी कभी मिलेंगी, धीरज रखो, आप सबसे भी मिलेंगी। ओम शांति।